नमस्कार। आज की कहानी हमारी एक ऐसी फ्रांस के एयरपोर्ट पर फंसे व्यक्ति की कहानी है, जिसकी कहानी पर बाद में लेखक ने उस व्यक्ति के साथ मिलकर एक उपन्यास सा लिखा था। उसी घटना पर बाद में द टर्मिनल नाम की एक फिल्म भी बनी। द टर्मिनल स्टीवन स्पिल्सबर्ग की बनाई हुई फिल्म है और टॉम हैंक्स की वजह से भी इसे काफ़ी पसंद किया गया था। आलोचकों ने तो फिल्म को कोई खास नहीं सराहा, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को काफ़ी पसंद किया था। फिल्म के लिए असली टर्मिनल पर शूटिंग करने की इजाज़त मांगते मांगते स्पिल्सबर्ग कई जगह घूमते रहे और आखिर जब किसी ने उन्हें इजाज़त नहीं दी तो उन्होंने एक नकली सेट पर इसे फिल्माया। सेट जरूर नकली है, लेकिन इस सेट पर एयरपोर्ट की जो दुकानें दिखती हैं वो दुकानें असली हैं। कई बड़े ब्रांड आपको दिखेंगे वहाँ पे, जैसे ब्रुकस्टोन दिख जाएगा, डिस्कवरी चैनल, बर्गर किंग, ह्यूगो बॉस वगैरह की दुकानें दिख जाएंगी। नकली सेट पर बनी इन असली दुकानों का बाद में क्या हुआ होगा पता नहीं। नायक नई भाषा सीखने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करता है, भाषाविद उसके बारे में बताते हैं कि लोग सचमुच नई भाषा ऐसे ही सीखते हैं। टॉम हैंक्स बताते हैं कि ये किरदार निभाने के लिए उन्होंने कई भाषाएं जानने वाले अपने ससुर का चरित्र ध्यान में रखा था। फिल्म की कहानी में विक्टर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कारकोजिया नाम की किसी जगह से न्यूयॉर्क आया है। जितनी देर में फ्लाइट में वो उड़कर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरता और इमिग्रेशन तक पहुंचता, उतनी देर में उसके देश में गृह युद्ध छिड़ चुका था। अब अमेरिका में उसके पासपोर्ट की कोई मान्यता नहीं थी और युद्धग्रस्त क्षेत्र में उसे वापस भी नहीं भेज सकते थे, इसलिए वो एयरपोर्ट टर्मिनल पर ही फंस जाता है। कस्टम का एक अधिकारी फ्रैंक डिक्सन, जो उसका पासपोर्ट और टिकट जब्त करता है, उसका प्रमोशन होने वाला होता है। वो चाहता था कि कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाए और इस विक्टर से छुटकारा पा ले। दूसरी तरफ विक्टर, जो ना तो एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर जा सकता है, ना उसे भाषा ठीक से आती है, ना ही वापस अपने घर जा सकता है, वो अपने सूटकेस और एक टिन के डब्बे के साथ एयरपोर्ट में फंसा हुआ, क्या करूं, किधर जाऊं, ये सोच रहा होता है। धीरे धीरे दिखने लगता है कि विक्टर जैसा जीव है उसे हम लोग बेचारा भला आदमी कहते हैं। टर्मिनल पर वो सभी छोटे मोटे स्टाफ की मदद करते रहता है। दुकानों में वो काम ढूंढने की कोशिश भी करता है ताकि किसी तरह से उसका गुजारा हो सके। पैसे तो लंबे समय तक रहेंगे नहीं। अपने देश में शायद विक्टर किसी निर्माण की ठेकेदारी से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर भी उसका भला काम देखकर एक ठेकेदार चुपके से उसे टर्मिनल के एक छोटे से हिस्से को डिज़ाइन करने का काम दे देता है। एयरपोर्ट से अक्सर गुजरती एक फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस अमेलिया विक्टर को पसंद आने लगती है। लड़की को प्रभावित करने के चक्कर में विक्टर खुद को अक्सर सफ़र करता हुआ निर्माण से जुड़ा एक ठेकेदार बताता है। जाहिर है, ऐसा बताने पे लड़की को लगेगा कि शायद ये कोई बड़ा आदमी है, लेकिन डिक्सन थोड़े ही दिन में अमेलिया को जाकर के सच्चाई बता देता है। अब जब लड़की पूछती है तो विक्टर बताता है कि वो टर्मिनल में फंस गया है। वो अपना टिन का डब्बा अमेलिया को दिखाता है। उसमें जाज संगीतकारों का एक पोर्ट्रेट होता है। उसके पिता उस तस्वीर में मौजूद सभी के सभी संगीतकारों का हस्ताक्षर इकट्ठा करना चाहते थे। बाकी सभी का तो हो गया, मगर एक आखिरी 97 वाले का दस्तखत बाकी था। लेकिन इस सेक्सोफोन वादक बेनी गिल्सन से मिलने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है और मृत पिता की ख्वाहिश वो आखिरी दस्तखत वही लेने के लिए विक्टर न्यूयॉर्क आया हुआ था। डिक्सन जब सच्चाई बता देता है तो अमेलिया पे उसका असर उल्टा होता है। सच पूरा जानने के बाद अमेलिया और उल्टा विक्टर की मदद करने पर तुल जाती है। उसकी जान पहचान में एक बड़े नौकरशाह थे, थोड़े थोड़े तरुण तेजपाल टाइप जीव थे, शादीशुदा थे, इसलिए अमेलिया उससे बचती रहती है। लेकिन विक्टर की मदद जुटाने के लिए वो उस शादीशुदा नौकरशाह के साथ निकल पड़ती है। करीब 9 महीने टर्मिनल पर गुजार चुके विक्टर को एक दिन लोग बताते हैं कि उसके देश में युद्ध खत्म होने की खबर आ गई है, अब वो वापस जा सकेगा। उधर अमेलिया अपनी जान पहचान के जरिए विक्टर के लिए एक दिन का वीज़ा जुटा लेती है। कस्टम वाला डिक्सन इतने महीनों से विक्टर के ना परेशान होने से और भी ज़्यादा चिढ़ गया था। वो किसी तरह विक्टर को ऑटोग्राफ नहीं लेने देना चाहता था। इसके लिए डिक्सन ने गुप्ता नाम के एक सफाई कर्मचारी को वापस भगा देने की धमकी दी। गुप्ता कभी दशकों पहले भारत से चोरी छुपे आ गया था और बरसों से टर्मिनल पर सफाई कर्मी का काम कर रहा था। कहीं बेचारे गुप्ता को उसके ऑटोग्राफ की सजा न झेलनी पड़े, इसलिए विक्टर अपना इमरजेंसी वीज़ा बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब गुप्ता को इसका पता चलता है तो बूढ़ा गुप्ता उस जहाज़ के सामने रनवे पर दौड़ लगा देता है जिस जहाज़ से वो जा रहा होता है। सजा के तौर पर गुप्ता तो गिरफ्तार होता है, लेकिन हवाई जहाज को जो रोका जाता है और उसके बदलने का जो क्रम होता है, इस बीच में विक्टर को ऑटोग्राफ लेकर आ जाने का मौका मिल जाता है। फिल्म के अंत में आप देखेंगे तो गुप्ता को वापस पकड़कर भेज दिया जा रहा होता है, वापस भारत डिपोर्ट किया जा रहा होता है। टर्मिनल के दूसरे छोटे कर्मचारी वहीं काम कर रहे होते हैं। अमेलिया कहीं आगे के सफ़र पर निकल गई होती है और ऑटोग्राफ लेकर लौटता हुआ विक्टर टैक्सी वाले से कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। आप मेरी धोखे से भगवद गीता पढ़ा देने की आदत से अगर वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि इस बार भी मैंने वही किया है। फिल्मों के एक डायलॉग की वजह से गीता सार पर भी आपका ध्यान चला गया होगा। फिल्म का नायक न कुछ लेकर आया हुआ होता है, न साथ ले जाने के लिए उसके पास पैसे शोहरत जैसी कोई चीज़ होती है। जो भी संबंध दोस्ती वगैरह उसने इस कुछ महीनों की कहानी में जुटाए थे वो टर्मिनल पर ही बने थे और उन्हें भी वो वहीं छोड़कर जा रहा होता है। फिल्म का अध्ययन करने वाले आपको हैरी पॉटर की एक फिल्म में जो ट्रेन स्टेशन का सीन दिखा था उसमें भी इसी दर्शन का साम्य दिखा देंगे। यहाँ हम परिवर्तन के अनिवार्य होने जैसी किसी बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो आमतौर पर गीता सार के नाम पर चल रहा होता है या आपको बताया जाता है, उसमें से अधिकतर आपको 18वें अध्याय में मिल जाएगा। ये बाकी अध्यायों की तरह करीब 50 श्लोक में नहीं खत्म होता, ये थोड़ा बड़ा सा है। दूसरे अध्याय की तरह ये भी 70 श्लोक से ऊपर चला जाता है। बाकी की पूरी भगवद गीता जैसा ही इस अध्याय में भी ज़्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है। इसमें 59 श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं और यहाँ पर 45वें श्लोक में श्री कृष्ण कर्म की महत्ता बता रहे होते हैं। 48वें श्लोक पर अगर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे आग होगी तो धुआं भी होगा ही, वैसे ही चाहे कोई भी कर्म करो उसमें कोई ना कोई दोष होता ही है, लेकिन इस वजह से कर्मों का त्याग नहीं किया जाता। जैसे इस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो गुप्ता नाम का जो भारतीय किरदार दिखाया गया है वो अमेरिका कैसे पहुंचा वो गौण है। वहाँ वो सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहा होता है। प्लेन के आगे उसका दौड़ जाना भी गैरकानूनी था, यानी यहाँ भी उसका कर्म धुएं से ढका हुआ ही है, उसकी उसे सज़ा भी मिलती है। इसमें से हर एक कर्म किसी न किसी तरह से दोषयुक्त कहा जा सकता है, लेकिन अगर ये वो ना करे तो क्या होगा? ये कहा जा सकता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, शायद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही दूसरे छोटे छोटे किरदारों के काम में भी आपको दिख जाएगा। ये नायक और नायिका में भी दिख जाएगा। नायिका के जिस नौकरशाह से संबंध थे उसे सही नहीं कहा जा सकता, उसने जिस उद्देश्य से संबंध बताए उस बारे में कहना भी मुश्किल है। नायक अपने ऑटोग्राफ का मोह छोड़ के जो वापस जाने की कोशिश करता है फिर उसकी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो सही कर रहा था, उसमें कोई बेवकूफ़ी या गलती नहीं थी, ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, पूरे प्रकरण को देखकर आप ये कह सकते हैं कि भविष्य आपने देखा नहीं तो किसी चीज़ के सही गलत, नैतिक अनैतिक, हिंसक अहिंसक, इन सब का फैसला सुनाने वाले आप कोई न्यायाधीश नहीं हैं, इसलिए फैसला सुनाने नहीं बैठना चाहिए। जैसे इस श्लोक में कर्म छोड़ने की बातें नहीं हो रही होती, वैसे ही बाकी के दूसरे तीसरे अध्याय के जो इस श्लोक से संबंधित दूसरे श्लोक हैं उनमें भी देखेंगे तो कहीं भी कर्म छोड़कर सन्यासी होने नहीं कहा जा रहा होता। इसलिए भगवद गीता पढ़कर सन्यास जैसा कुछ होगा ये कहना एक सेक्युलर धूर्तता से ज़्यादा कुछ नहीं है। श्री भगवान उवाच वाले श्लोकों को कभी भी मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हरि विष्णु का एक नाम है जैसे हर शिव का नाम होता है, इसीलिए शायद हारे को हरि नाम जैसी कहावतें भी बनी गई होंगी। शायद कभी हतोत्साहित लोगों को उनके गुरु कोई साधु भगवद गीता सुनाने बैठ जाया करते होंगे। बाकी ये जो हमने आपको धोखे से बता डाला है वो भगवद गीता का 18वें अध्याय का 48वां श्लोक केवल नर्सरी के स्तर का था। पीएचडी के लिए आपको भगवद गीता खुद ही पढ़नी पड़ेगी। धन्यवाद।